चल रही है। मार बहुत
नहीं बनाना चाहिए। देवराज इंद्र की जो आज्ञा उसको क्यों भंग करें? बोला प्रभु एक हमारी प्रार्थना है, हम लोग किसे आयुर्वेद की विद्या के मां निपुण हैं, तो ऐसा करें कि पहले आपका मस्तक जो है तो हम काट करके और घोड़े के चढ़ा दें, घोड़े का मस्तक आपके चढ़ा दें, फिर उस घोड़े के मुंह से आप हमारे को उपदेश करना और देवराज इंद्र आ जाएगा तो इसे बदल से घोड़े के मस्त को तोड़ डालेगा, काट डालेगा। तो काट डालेगा तो हम ये करेंगे कि फिर जो आपका मस्तक वापिस से आपके लगा देंगे और घोड़े का मस्तक घोड़े का। आपका हुक्म तो हुक्म हो तो ऐसा करें, हम तो आपसे ही उपदेश सुनना चाहते हैं और दूसरे से नहीं। उनकी श्रद्धा दे करके, प्रेम दे करके उन्होंने समझो कि आदर दे दिया। तो अश्विनी कुमार ने एक घोड़े को लाकर उसका मस्तक काटा और फिर गुरु के मस्तक को काट करके वहां घोड़े का मस्तक लगा दिया और गुरु का जो मस्तक है वो घोड़े के लगा। देवराज इंद्र को मालूम हुआ कि रवि की ऋषि अश्विनी कुमारों को उपदेश दे रहे हैं, हमारी आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है, कानून में आ गए हैं। तो देवराज इंद्र आए और बज उठा करके और समझो कि उनका मस्तक जो सो काट डाला अलग कर। अश्विनी कुमार वहां मौजूद थे ही, उन्होंने गुरु का जो मस्तक है वो तो गुरु के लगा दिया, घोड़े का मस्तक घोड़े का, और दोनों के दोनों ऐसे जीवित रहे। मनुष्य को एक बार फांसी दी जा सकती है, दो बार नहीं। एक बार मस्तक काट डाला, अब इंद्र का कोई उपाय नहीं है, कानून के बाहर इंद्र नहीं कर सकते। तो इंद्र ने ये कहा अश्विनी कुमार से कि तुमने गुरु की हत्या की, गुरु का मस्तक काट डाला, तो समझो कि इस पाप के कारण से मैं तुम लोगों को श्राप देता हूँ कि जग के बीच के मां जो भाग दिया जाता है ना वो कोई भी तुम्हारे को नहीं देगा, और जो देगा उसका मस्तक काट डालू। ठीक है, संसार में अश्विनी कुमारों को भाग देना बंद हो गया। चवन जो ऋषि थे तो बड़े तपस्वी थे, उनकी स्त्री का नाम सुकन्या था, सरियाती राजा की लड़की थी। वो कथा इस प्रकार से आती है, संक्षेप से आपको बता दूं कि चवन ऋषि एक प्रकार से बड़े तपस्वी तपस्या के वहां निपुण थे। एक समय के महाराजा सरियात उस मार्ग से निकले और वहाँ एक प्रकार से मुकाम किया, और चवन ऋषि तपस्या के मां इतने एकदम लगे हुए थे, उनके ऊपर धूल चढ़ गई, मट्टी चढ़ गई और उस मट्टी में गांठ पैदा हो गई, गुलम आदि एक प्रकार से बहुत बड़े नहीं, छोटे छोटे गांठ, और ऋषि सब मट्टी में बुड़ गए। ये उनकी दो आंखें हैं सो दिखती है और कुछ नहीं, ऐसी घोर तपस्या जो आज के जमाने में कोई कर ही नहीं सकता। सरियाती राजा की जो कन्या जिसका नाम सुकन्या था, वो सहेलियों के सही थे, उसे आश्रम के चारों तरफ भ्रमण करने लगी। एक बोझे में, एक संजो की गुलम के संगठन बोझे में क्या देखती है कि दो चीज चमक रही है। उसने समझाने की क्या चीज है, तो एक शूल लेकर के उन्हें दोनों आंखों में चहो दी, जिससे चवन ऋषि अंधे हो गए और उन नेत्रों से खून की धारा बहने लगी। ये देख करके वो घबराई और दौड़ करके अपने पिता के शिविर के बीच में तंबू में वहां आ गई। उस पाप के प्रभाव से क्या हुआ कि राजा की जितनी सेना थी सबके तट्टी और पेशाब बंद हो गए, न किसी का पेशाब लगता है न किसी का तट्टी लगता। राजा बड़ा घबराया कि क्या बात हुई, अच्छे ब्राह्मणों से ऋषियों से पूछा, महाराज ये क्या बात हुई, ऐसा कौन सा अपराध हो गया कि तट्टी पेशाब सबके ही बंद हो। सबसे पूछा क्या बात, अच्छे से विद्वानों ने कहा कि ये चवन ऋषि का आश्रम है, यहाँ चौन ऋषि तपस्या करते हैं, शायद कोई उनका अपराध हो गया होगा। तब से पूछा, यदि सच्ची सच्ची बात बता दो किसी से अपराध हुआ, नहीं तो सब मरेंगे। तब कन्या ने पिता से सच्ची बात कही, पिताजी गलती से मेरे द्वारा ऐसा अपराध हो गया, ये तो मुझको मालूम नहीं कि क्या अपराध हो गया। कि दो एक चमकीली चीज थी तो मैंने उसके बाद सूर से भोजी, उससे खून निकलने लगा, अब मैंने पता नहीं कि क्या। तब वो राजा वहां गए, देखा कि एक प्रकार से भोजों के भीतर के बीच के मां और आंखों में से खून निकलता है, और ये मालूम हो गया कि ये चमन ऋषि है और चमन ऋषि का आश्रम का बहुत से वर्ष हो गए तपस्या करते करते उस पर माटी फिर गई, केवल आंखें ऐसा दिख रही है, ये चमन ऋषि के नेत्र नष्ट कर दिए गए, बड़ा भारी अपराध। तो राजा उनकी शरण जाकर के उनकी स्तुति करने लगा कि महाराज मेरी बालक जो कन्या उसके द्वारा आपका अपराध हो गया है। फिर वो जमीन खोद करके ऋषि को बाहर में निकाला, महाराज एक प्रकार से अपराध को क्षमा करिए, सबके टट्टी पैसा बंद हो गए हैं, सब मर जाएंगे, तो इनके इनके जीवन की आप रक्षा करिए। उन्होंने कहा कि राजन बात यह है, मेरी लड़की ने ये बड़ा घोर अपराध किया है, उसी का नतीजा ये हुआ, इसलिए ये जो मेरा शरीर है इसकी सेवा के लिए इस लड़की को इसके साथ ब्याह कर, वो एक प्रकार से अपराध गया, वो ही अपना इसकी सेवा। राजा ने सोचा कि ठीक, उसी वक्त एक प्रकार से अपनी लड़की का विवाह कर दिया, सब ऐसा उस किसी के साप से मुक्त। वो कन्या अपने पति को परमेश्वर के समान समझ करके फिर उनकी धर्म पत्नी बनकर के वो सेवा करने लगी। एक समय में अश्विनी कुमार से भेंट हुई, तो एक प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की कन्या ने कि ये मेरे पति को किसी पर आप आराम कर दो, आप वैद्य हो। और उन्होंने भी कहा कि ठीक है, तो उन्होंने एक तालाब की रचना करके कि औषधि का तालाब बनाया, उसने उनको स्नान कराया, और स्नान करने से भी रोग तो बीत ही गया, उनका स्वरूप भी एक अश्विनी कुमार के समान हो गया, जवान हो गया, और जो अंगे थे वो आंख एकदम दिव्य नेत्र हो गए, शरीर भी दिव्य हो गया, और अवस्था भी जवान हो गई। अब ऐसा हो गया कि जैसे अश्विनी कुमारों का सुंदर रूप है, रूप और यौन के माँ, ऐसे चौन ऋषि हो गए। चौन ऋषि खुश हो गए और कहा कि मैं आपका क्या प्रतिभुगार करूं, आप मेरे से किसी बोलिए, क्योंकि एक प्रकार से आपने बड़ा भारी हमारा उपकार किया, तो हमारा भी कर्तव्य अभी हम बदले में आपका किसी करें। तो बोले महाराज यदि आप कर सकें तो देवराज इंद्र ने जग के मां हमारा भाग बंद कर दिया, आप उसको शुरू कर दीजिए, बस यही हमारी मां यही तो विदा दी। उसके बाद के मां बोले अच्छा ठीक है। तो राजा सरियाती के पास में चमन ऋषि गई, राजन यदि आप यज्ञ करो तो मैं आपका ऋषि बन करके यज्ञ करा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यज्ञ तो मैं करता ही रहता हूँ, और अब तो मैं करूँ तो भी करूँगा, क्योंकि आप हमारे एक प्रकार से ऋषि बने, यज्ञ कराने वाले बने, ये तो हमारे सौभाग्य की बात है। आप जैसे महापुरुष हमारे को यज्ञ कराने वाले बन जाना, तो मैं करना हो तो भी मैं करूँ, और मुझको तो करना ही है। तो चंद ऋषि जो है जब कराने लगे, राजा सरियाती ने जब आरंभ कर दिया, उस जग से भी चंद सब देवताओं को जब भाग देने लगे, तो इस समय के बीच के वहाँ अश्विनी कुमारों को भी तो भाग देने की तैयारी है, भाग देने लगे। देवताओं को तो मालूम हो जाता है, इंद्र को मालूम हुआ कि चंद ऋषि प्रकार से तो भाग देंगे, और तुम्हारी जो मर्यादा है उसको आज से तोड़ दें। तब देवराज इंद्र बदल ले चुके हैं आए, और आगे ने कहा कि तुम यही से कि महाराज मेरी आज्ञा है कि ये एक प्रकार से इन्होंने गुरु का मस्तक उतार दिया था, इस वास्ते ये पापी हैं, तो इस काल से मैंने अश्विनी कुमारों को जग में भाग देना बंद कर दिया है। अरे ये कानून बना दी, ये घोषणा कर दी कि जो आपने इनको भाग देगा उनका मस्तक में मदद से तोड़ डालू। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि ये हमारी जो कानून है इसको आप भंग दें। क्यों ऋषि ने वो बात सुन ली, कुछ बात नहीं, बतो आपने जिस प्रकार से यज्ञ का आयोजन किया था वैसे करते रहे, वो तो करे उनके लिए, वो बंद कैसे कर दे। अब यज्ञ आहुति उनके नाम पर आपने देने लगे, तो जब आहुति दे चुके अश्विनी कुमारों को तब बज्र उठाया मारने के लिए। चमन ऋषि के बज्र उठाया और एक प्रकार से उन्होंने संकेत से बज्र को ऐसा कह दिया, बज्र वहीं खड़ा रहे, एक इंच हाथ में ऐसा हलता नहीं ऐसा हलता। अब बज्र मारना तो दूर रहा, वो हाथ के एक उपाधि और खरीद, तब देखा कि मैंने बड़ा अपराध किया। ये जो ऋषि के ऊपर बज्र उठा लिया, तब प्रार्थना शुरू की थी, प्रभु मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरा बड़ा भारी अपराध हुआ, आप क्षमा करो और मेरे अपराध को आप उसे माफ। ऋषि जब दयालु होते ही तो स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा, तो अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ के नीचा कर दिया और कहा कि जा, फिर ऐसा खास कभी नहीं करना, इसके अपराध को क्षमा कर। और उसके बाद फिर अश्विनी कुमारों को जग में भाग मिलने लगा। ख्याल करना चाहिए एक समय के बीच के मां जब संसार के मां बर्त्रासुर पैदा हुए और इंद्र के लिए वो एक प्रकार से काल था, तो वो इंद्र देवताओं को साथ में लेकर के उसी गदी की ऋषि के द्वार के ऊपर आते हैं और आकर के स्तुति प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपका जो शरीर है ये तो परोपकार के वास्ते है, महान पुरुषों की जो विभूति है वो संसार के सेवा के लिए है, तो आज हम आपकी शरण आए हैं। बर्त्रासुर जो है सब देवताओं को तंग कर रहा है, हम सबको तंग कर रहा है, तो प्रभु ब्रह्मा जी के पास हम लोग सब गए थे तो उसकी मृत्यु जो है तो आपके शरीर के जो हड्डियां हैं उसका बज्र बन करके और उससे भी उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इसलिए आपकी हड्डियां को हम दान में मांगने के वास्ते सब देवता हैं कि आप कृपा करके आपकी हड्डी ऐसा हमको दे, आपके शरीर की हड्डी, शरीर की हड्डी तो मरने के बाद ही दी जा सके, जी तो कैसे दी जा। मतलब ये कि आप शरीर त्याग कर दें तो आपकी हड्डियों को हम ले जा करके अपना काम बना दे रहे, और आपका जो शरीर है सो तो परोपकार के लिए है। ख्याल करना चाहिए वो इंद्र है जो धरती की ऋषि का मस्तक तोड़ने वाला, एक दिन अपने वज्र से मस्तक काटता है और एक दिन उनकी शरण आकर के अपने प्राणों की भिक्षा मांगता। धरती की ऋषि के दिल में किंचित मात्र भी ये भाव नहीं कि ये मुझको मारने वाला मेरा शत्रु है, उनके दिल में शत्रुता का कोई अंश मात्र भी नहीं। वो मारने आता है तो वही स्वागत है, आज दूसरे प्रकार से मारने के वास्ते आया है तो वही स्वागत है। ये अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा तुम्हारा काम सिद्ध हो तो ले जाओ। गांवों को बुला करके के अपने शरीर का जो मांस है उनको कटा देते हैं और जेल में जो हड्डियां रह जाती है उनको उठा करके इंद्र ले जाता है। बताया जाता है कि उनकी जो पसलियां थी उनके तो धनुष बनाई गई, किसी की किनाग और अपने सारंग धनुष और किनाग और गांडीव धनुष, गांडीव ने ब्रह्मा जी धर्म की और किनाग ने शिवजी और सारंग धनुष ने विष्णु भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश उन तीन धनुषों को तीनों ने धारण, जो रीढ़ की हड्डी है इसका बज्र बनाया गया वो इंद्र ने धारण किया, तो ये चारों देवताओं ने उनकी हड्डियों को हथियार बना कर दे रखे। और हथियार भी कैसे बने, आज सुंदर की सारी धनुष पर आपने वास्तुपस्त्र चढ़ा करके छोड़ दिया जावे तो तिलों की भस्म होते, और सारंग धनुष के ऊपर नारायण से छोड़ दिया चढ़ा के छोड़ दिया जावे तो तीन लोग भस्म। ये गांडी धनुष ब्रह्मा जी जो है उन्होंने सोम को दी, सोम ने जो है तुम जो की वरुण को दी, और वरुण ने जो वो धनुष है तो अग्नि देवता को दी, और अग्नि देवता ने वो धनुष जो है तो अर्जुन को, वही गांधी धनुष की नीचे की हड्डी से बनी। वो गांधी धनुष ने टूटती ने कुछ हो गया उसका समझो कि कोई प्रतिकार कर ही नहीं सकता। तो कहने का यह अभिप्राय है कि उनके क्षमा की तरफ ख्याल करके देखो कि उनमें कितनी क्षमा, कितनी शांति और कितनी योग्यता और कैसा उनका उद्देश्य कि मेरे द्वारा यदि उपदेश दिया जावे और ये अश्विनी कुमार दूसरों के पास जाकर उपदेश ग्रहण करे तो उसे तो यही भला हो कि पहला ये अपने दूसरे को गुरु बना करके उसे उपदेश दे दे भाई, माने हमारा दिया हुआ उपदेश बीच में ही रह जाएगा तो एक प्रकार से थी आपने अधूरा रह जाएगा। तो वे ऐसे महापुरुष थे कि उपदेश देते थे कब कि जब उसको पात्र समझते थे, पहले उसको पात्र बनाते थे उसके बाद उपदेश देते थे, तो उपदेश खाली नहीं देता था। उच्च कोटि के जो महापुरुष होते हैं गृहस्थाश्रम के रिश्ते में वे असली से अपने अपने धर्मपत्नी से जो सहवास करते हैं तो उनका वीर्य जो है अपने समझो कि अमोघ होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। उन पुरुषों का जो संकल्प है वो सत्य होता है, उनकी जो वाणी है वो सत्य होती है, उनकी जो क्रिया है वो सत्य, उनकी वाणी सत्य होती है, उनकी क्रिया सत्य होती है, उनका संकल्प सत्य होता है, उनका वीर्य अमोघ होता है, उनकी सभी चीजें अमोघ। तो ऐसे ऐसे महापुरुष थे कि यदि मैंने उपदेश दे दिया और फिर इन्हें का काम नहीं गया तो वो उपदेश देना हमारा व्यर्थ ही हुआ। इतनी शक्ति होते हुए भी और जो आपने समझो कि उनकी दृष्टि में शत्रु नहीं किंतु शत्रु का काम करने वाले इंद्र आकर के अपने प्राणों के भिक्षा मांगता है तो वह ना नहीं कि ले जाओ तुम्हारा काम बड़ा, तो इसका नाम क्षमा। इतना भारी प्रभाव हम लोगों को एक प्रकार से इससे ये आदेश लेना चाहिए। उसमें इतना उत्पत्ति का वैराग था दधीची के बीच में, तीनों लोगों का जो राजा देवताओं का राजा इंद्र, इंद्रासन के जो भोल हैं वे उनकी दृष्टि में शुक्र और कुकर के भोग के समान। आज हम लोग समझो कि रुपयों के लिए अपने धन के लिए धर्म को त्याग कर देते हैं, लोभ में आकर के धर्म का त्याग कर देते हैं, मोह में आकर के त्याग कर देते हैं। क्योंकि तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि अपने धर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए, लोभ से भय से किसी से भी अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। उनकी जो वो शक्ति थी वो शक्ति हम लोगों के लिए हो सकती है, इस प्रकार का वैराग, इस प्रकार की उपरती, उस प्रकार का ज्ञान और उस प्रकार की दृढ़ता क्षमा सामर्थ्य एक अलौकिक सामर्थ्य। हम लोगों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि संसार के भोगों को, तीनों लोगों के भोगों के समूह को, जो सब तीनों लोगों का जो राजा देवराज इंद्र जो विशाल भोगों को भोगते हैं इंद्रासन पर स्थित होकर के, उनके भोगों को एक शुक्र कुकर के भोगों के समान बनाया। इतना उच्च कोटि का वैराग था। एक भाई ने आज मुझसे पूछा था कि परमात्मा की जो प्राप्ति जिसको मुक्ति कहते हैं, परम पद की प्राप्ति कहते हैं, तो उस आनंद की बड़ी महिमा गाई जाती है स्मृतियों में, स्मृतियों में, गीता में, यम लब्ध्वाचा परम लाभम मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन स्थितो न दुःखे न गुरुणापि विचालते। जिस आनंद को पाकर के उससे बढ़कर और दूसरा आनंद नहीं समझता है, और जिस आनंद के मस्तिष्क होने पर भारी से भारी भी दुख आकर प्राप्त हुए तो वो उससे विचलित नहीं होता है। ऐसा जो आनंद है उसके पूर्व के श्लोक में बताया, ये गीता की 6 अध्याय का 22वां श्लोक है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को सुखमा तंकि कम यतन और बुद्धि ग्राजम चिंद्रियम लेती यतन से युवायम चितस्थल की सत्ता। जो अतंत सुख है जिसका कोई अंत नहीं है और सूक्ष्म हुई शुद्ध हुई बुद्धि से ही वो जाना जा सकता है, इंद्रियों से नहीं, अतिंद्रिय इंद्रियों से वो करेगा आनंद। जिस कार्यक्रम साधक उस आनंद का अनुभव करता है, रेती यत्र जिस समय के मन उसके उस आनंद का अनुभव करता है, फिर उस आनंद से वो कभी विचलित नहीं होता, पूरा उस आनंद के मन नित्य से शुद्ध होता है, ऐसा वह आनंद है। उस आनंद के विषय में प्रश्न चलता था, बांकड़े की बात है, और पूछने वाले थे महादेव जी लोहिया, ये गीता का अच्छा अभ्यास किया करते थे, तो ये श्लोक आ गया, तो उन्होंने पूछा कि ही शायद ये श्लोक था कि इसके माँ दूसरा कोई बड़े परमात्मा की प्राप्ति होने के बाद उसको जो आनंद मिलता है, उस आनंद के साथ के माँ जो हम संसार के पीछे भोगों को भोगते हैं, ये जो हमारे इंद्रियों का जो भोग है शब्द शब्द रूप रस गंध, इसका उसका कितना डिफरेंस है। वास्तव में तो उस आनंद को जो प्राप्त करें वही जाने, हम लोग उसका क्या कह सकते हैं, वे महापुरुष कह सकते हैं। उन महापुरुषों की दृष्टि से भी, शास्त्र की दृष्टि से भी बतलाया जाता है कि देवराज इंद्र को पूछा जाए कि तुम जो इसे जीव भोगों को जो भोग रहे हो उसका, और शुक्र कुकर आदि जो है इनका जो सुख है उनका कितना फर्क है, तो वे कहेंगे कि जो शुक्र कुकर जो है उसमें कोई आनंद है, उससे तो एक प्रकार से घृणा हमको आती है, हमको मनुष्यों के मन दुर्गंध आती है, और फिर मैले खाने वाले जो सूर आदि है उनमें तो घृणा आती है, उसमें तो दुख होता है, वहां सुख कहाँ है, तो दुख का सुख का मुकाबला कैसे हो सके। लौकिक सुख के बीच के माँ भी जो स्वर्ग का जो सुख है वो सबसे बढ़कर के है, फिर इंद्र का सुख सबसे बढ़कर के है, तो इंद्र के सुख के मुकाबले के बीच के माँ जहाँ दर्शन करने से दुर्गंध हम लोगों को भी आती है, जो मैले खाने वाली जो योनि है उसको देख करके मैले में दुर्गंध आती है, मैले खाने वाले पशुओं में दुर्गंध आती है, कोई हमारे लोगों को भी पूछे तुम उसमें कोई सुख थोड़ा ही बदला में, तो उसमें तो दुख ही दुख है, सुख कहाँ, इसका तो मुकाबला हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से कि वो परमात्मा के विषय का जो सुख है वो तो इसे दुख दुख दोनों से रहित है, उसको तो समझाने के लिए अत्यंत आनंद, अक्षय आनंद, पूर्ण आनंद, ये समझाने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, किंतु वो तो सुख दुख दोनों से अपने परे की चीज है, उसके साथ में संसार के सुख का मुकाबला क्या हो सके। संसार को हुआ किंतु कि सुख सबसे ठीक कहना ही एक प्रकार से लज्जा की बात है, जिनको आप सुख समझते हो उनका नाम तो दुख है, आपकी दृष्टि के में वो सुख है, किंतु विवेकियों की दृष्टि के बीच में तो वो सुख ही नहीं है, उसकी संज्ञा ही दुख है, और दुख का एक प्रकार से समझो कि उसे अक्षय सुख का मुकाबला ही कैसे किया जा सके, जो बताया जा रहा कि ये इसका इतना डिफरेंस है। ख्याल करना चाहिए ये जो संसारिक जो विषय पुरुष है उनको उसमें सुख प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ऐसा सुख नहीं है। तो विवेकी जो पुरुष है, ज्ञानी नहीं, महात्मा नहीं, महात्मा जो पुरुष है उनकी दृष्टि में तो सृष्टि ही नहीं, किंतु जिनकी दृष्टि में सृष्टि है और व्यर्थ है, वितराग पुरुष है, उनकी बात आपको बताई जाती है कि उनकी कितनी इज्जत है वृत पुरुषों की। गीता के मां और दर्शन शास्त्र में शब्द का ख्याल करके देखे, महर्षि पतंजलि पातंजलि योग दर्शन के और पातंजलि योग दर्शन के वहां कहते हैं परिणाम संस्कार परिणाम परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्रय दुखों में सर्व विवेकी रहो, परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाश्रय दुखों में सर्व विवेकी रहो, सूत्र है, इसका भाव यह है कि विवेकी की दृष्टि में एक प्रकार से सब दुख ही है। दुख तो दुख है ही, जिनको हम लोग सुख समझते हैं वो सुख भी उनकी दृष्टि में दुख ही है। कैसे कि परिणाम और ताप और संस्कार, परिणाम दुख, संताप दुख और संस्कार दुख, इनके समुद्र से तीर सब सुख भी दुख ही है। बोले हम समझे नहीं परिणाम कि जैसे एक पुरुष जैसे भोजन करता है उसको सुख प्रतीत होता है, जीवा के स्वाद के बसीभूत होकर करके उसमें सुख की कल्पना, सुख समझ करके कल्पना तो विवेकी की दृष्टि में उनको सुख समझ करके और उसका स्वाद लेता है और उसका नतीजा होता है जिस प्रकार से कि वो कुबत कर लेता है, उससे उसके बीमारी हो जाती है और फिर शिशक शिशक करके मरता है। इसी के समझो कि गृहिणी की बीमारी है और वैद्य ने कहा कि भी तुम हलवा या कोई झूठी चीज नहीं खाना, स्त्री के साथ में सहवास नहीं करना, ये तुम्हारे लिए विष के समान है। किंतु समझो कि मिठाई है, हलवा है, गृहिणी के रोग के लिए ये विष है, पर वो जीवा के स्वाद के बसीभूत होकर के खा लेता है और फिर फूल जाता है। समझो कि